कर्मकांड लेक्चर नंबर 7 लिखी है भंडारी भाषा में, उसी का हिंदी अनुवाद है आपके हाथ में। और इस कर्मकांड में हमने प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार पहला देख लिया है। उसमें हमने कर्मों के नाम, उसके कुछ भेद आदि की चर्चा की है। थोड़ा उसको देखकर फिर आगे हम बढ़ते हैं। देखो 56 पृष्ठ निकालना, 56 पेज नंबर 56। यहाँ ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय आदि इस क्रम से क्यों कर्म बताए गए, या कहेंगे वेदनी को भी तीसरा नंबर क्यों दिया जाता है, उसकी थोड़ी चर्चा देखकर फिर हम आगे बढ़े। क्योंकि नाम तो हमने सब देखे, 8 कर्मों के घाती अघाती, उसके भेद, उसकी चर्चा हमने कल कर दी थी। तो ज्ञानावरण का नाम क्यों पहले लिया, फिर दर्शनावरण का क्यों लिया, उसके संबंधी में कुछ चर्चा यहाँ देखते हैं। देखो 15 की टीका, संसारी जीव पहले पदार्थों को देखकर पश्चात जानता है। तो मेरा ये प्रश्न है, एक ही जीव पहले देखकर जानता होगा कि नहीं जानता होगा? ये आंखों से देखने की बात नहीं है, जिसको सामान्य अवलोकन कहते हैं, सत्ता मात्र का ग्रहण, उसको उसने पहचाना नहीं है। पहचान लिया तो जानना हो जाता है, क्योंकि ये दर्शन जो है ना, वो हमारे ज्ञान में वो डायरेक्ट ऐसे क्लियर नहीं हो जाता, परंतु जहाँ जानना हो रहा है उसके पहले उसका दर्शन होकर फिर जानना हो जाता है। तो कहते पहले पदार्थों को देखकर फिर जानता है। वो कैसे जानता है? तो पदार्थ को अस्थि नास्ति इत्यादि सप्त भंगों के द्वारा निश्चय करके पश्चात श्रद्धा करता है। आप कहेंगे हमको सप्त भंगी के नाम ही मालूम नहीं है, हम कहाँ अस्थि नास्ति से जान रहे हैं? तो क्या आप अस्थि नास्ति से जान सकते हैं कि नहीं सकते है? जानते हैं इसका कलर कौन सा है? सफेद। तो आपने ये रखी है सफेद है, ये काला नहीं है, नीला नहीं है, पीला नहीं है, ये जानने का कार्य है। ये सफेद है और ये काला नहीं है। अभी फिर क्या सुना गुरुदेव के पूरे घंटे भर में, मैं तो ज्ञायक हूँ, ये पररूप मैं नहीं हूँ, राग रूप मैं नहीं हूँ। तो ऐसा अस्थि नास्ति से निश्चय करके जानता है, पश्चात श्रद्धा करता है। इसलिए हमेशा एक ज्ञान के निर्णय की बात आती है ना, पहले निर्णय होना चाहिए। निर्णय में कुछ गड़बड़ी है, ज्ञान में कुछ संशय है, विपरीतता है, तब तक वो श्रद्धा से श्रद्धा नहीं होगा। इसलिए बाद में श्रद्धा लिखा है यहाँ पर। देखो ऐसा आता है शास्त्र में, पहले ज्ञान होगा तब श्रद्धा होगा, ये जो टोलोमेजी साहब कहते हैं, नहीं तो ससे के सिंह के समान हो जाएगा, जाने बिना श्रद्धा किसका। शास्त्र में ऐसा भी आता है कि श्रद्धा नहीं होगा तो उसको सम्यक ज्ञान नहीं कहेंगे। तो हमको प्रश्न पड़ता है, इधर ऐसा कहते उधर ऐसा कहते, क्या समझना? पहले जो जानना कहा है वो आगम से जानने की बात है। सर्वज्ञ ने, भगवान ने बताई हुई बात हम आगम से जानते हैं, सही उसका निर्णय करते हैं, फिर आत्मा का लक्ष्य करके आत्मा को जानेंगे, तब उसको हम सम्यक दर्शन कहेंगे। उसी समय जो हमारा जानना है वो सम्यक ज्ञान हो जाएगा। इसलिए देखना वह दर्शन, जानना वह ज्ञान, श्रद्धान करना वह सम्यक, तो ये जीव के गुण है। ये जीवों के गुणों की बात की। अब ये जीवों के गुणों में जो निमित्त बना बनता है कर्मों का, उसके भी इसी और से हम कह रहे। नीचे के 16 की टीका देखते हो। आत्मा के सर्व गुणों में ज्ञान अभ्यर्हित है, पूज्य है, प्रधान है, इसलिए पहले कहा। ज्ञान का नाम पहले लेते हो, वो तो प्रकट लक्षण है, मुख्य गुण है जीव का। व्याकरण में क्या कहते हैं? अल्पात अर्चम, जो छोटे शब्द है ना, छोटे अक्षर नहीं, कम अक्षरों वाला शब्द है, वो पहले लिया जाता है, या जो मुख्य है, प्रधान है, उसको पहले कहते हैं। नहीं समझे? पहले माँ फिर बाप कहते हैं ना, माँ बाप। भाई बहन, भाई में दो अक्षर है, बहन में तीन अक्षर है, पहले भाई कहते हैं फिर बहन कहते हैं। जीव का और पदार्थों का कैसा संबंध है? हम जानने वाले हैं और पदार्थ हमारे गेय है, तो कौन सा संबंध है? आपने गाय गेय क्यों नहीं कहा? क्योंकि हमारा अनुक्रम क्या था? जीव और पदार्थों में, तो पहले जीव का नाम ज्ञायक लेना था, परंतु गेय में दो अक्षर है, ज्ञायक में तीन है, तो हम कहेंगे गेय ज्ञायक समझते हैं। ऐसी पद्धति है, इसलिए पहले ज्ञान का नाम लिया, बाद में दर्शन का नाम लिया। ख्याल में होता तो पहले दर्शन, बाद में ज्ञान होता है। मुख्यता की अपेक्षा और कम शब्दों की अपेक्षा, उसको पहला कह दिया ज्ञान और फिर दर्शन, और उसके बाद सम्यक को कह दिया। जीवन के गुण पहले उस ऑर्डर से कहेंगे, फिर उनके जो निमित्त रूप से जो कर्म उसको घाटते हैं, उसकी बात बाद में करेंगे, उसको भी उसी ऑर्डर से नाम देंगे। वीर है वह ज्ञानाधिक की शक्ति रूप जीव में पाया जाता है। जहां जहां ज्ञान की बात आती है, अभी आप क्षोभम की बात करो या शाही ज्ञान की बात करो, वहां उसके साथ वीर्यांतराय का भी उसके साथ निमित्तपना बनता ही बनता है। कहीं भी आगम के शास्त्र में ज्ञानावरण के क्षोभम से ज्ञान होता है, इसे अकेले ज्ञानावरण को नहीं लिया, वीर्यांतराय को उसको साथ साथ लिया है, क्योंकि वो जानने रूप जो उसमें बल है, जो वीर्य का बल है, उसके कारण क्या होता है, जैसे अनंत ज्ञान में भी घटित किया है। जहां अनंत ज्ञान है, तो इतना जानने से थकान होती होगी ना, उसको खेद कहते शास्त्र में, खेद यानी थकान। तो इतना अनंत जानने के कारण खेद होगा कि नहीं होगा? तो कहते नहीं, क्योंकि वीर्य भी अनंत है, वो उसका अपना बल है, तो उसमें जानने में कोई थकान नहीं होती है। हम मान लेते ना, इतना ये सब कर्मकांड जानने से हमको कितनी थकान हो जाएगी, तो 6-6 घंटे सुनने से, तो 6-6 घंटे सुनने से जान रहे हो क्या? आपकी ज्ञान की योग्यता से आपका ज्ञान नाम पर्याय चल रहे हैं। अभी क्या सुना? सब पूरे घंटे में वही सुना आपने, है ना? ज्ञान की पर्याय अपनी योग्यता से हो रही है ना, तो यही यहाँ कह रहे हैं। देखो, शक्ति रूप वीर इसमें पाया जाता है। इसलिए घाती कर्मों का जो अनुक्रम है, पहले किसका नाम लिया? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, फिर मोनीय, फिर अंतरह। अब यहाँ आगे के पेज पर देखिए, 57 पेज पर। अंतराय कर्म है तो घाती कर्म, परंतु अघातीवत है, यानी सभी जीवों के घात करना समर्थ नहीं है, यानी बाह्य में भी उसका कुछ निमित्त बना बनते हैं, दान लाभ वगैरह, तो हम तो बाह्य उदाहरण अन्य दृष्टांतों पर ही घटित करते हैं मुख्य रूप से, तो इसलिए उसको लास्ट में रखा। नाम, गोत्र और वेदनीय, इन तीन कर्मों के निमित्त से यह है, इसलिए आगादी के पश्चात अंत में अंतराय कर्म कहा। अब आयु कर्म के बल से 18 की टीका। नाम कर्म के कार्यभूत चतुर्गति रूप भव, यानी चतुर्गति में जो भव धारण किया जाता है, वो नाम कर्म का जो कार्य है, उसकी अवस्थिति किसके कारण है? उस भव में टिकाए रखने का कार्य कौन करता है? तो आयु कर्म। इसलिए आयु कर्म को पहले कहा, बाद में नाम कर्म कहा। यानी जो हम अघाती कर्म में इसी ऑर्डर से क्यों कहते, पहले आयु फिर नाम फिर गोत्र, इस तरह से उसका कारण बताए। पुनश्च चतुर्गति रूप भव के आश्रय से नीचपना या उच्चपना है, इसलिए पहले नाम कर्म कहकर बाद में गोत्र कर्म कहा। और वेदनी की बात करते, जब हम घाती अघाती भेद नहीं करेंगे, मात्र ज्ञानावरण दर्शनार्थ कहेंगे, तो ज्ञानावरण दर्शनार्थ तीसरे नंबर पर वेदनीय को रखते हैं। आपने सुना होगा कहीं, तो वो क्यों कहा उसको? उसका कारण यहाँ बताते हैं 19 नंबर के श्लोक में। वेदनीय कर्म घाती कर्मों के समान मोहनी कर्म का भेद जो रति अरति उसके उदय के बल से ही जीव का घात करता है। जहाँ मोहनीय है और रति अरति का उदय है उसके कारण जीव को ईष्टरेशपना बाधित होता है, वो किसी संयोग का लक्ष्य करके स्वयं सुखी दुखी होता है। तो मोहनीय के प्रेजेंस में उसके उदय में वेदनीय का कार्य चलता है। तो सुख दुख रूप साता असाता का कारण इंद्रियों के विषय उनका अनुभवन करवाकर घात करता है। इसलिए घाती कर्मों के बीच मोहनीय कर्म के पहले वेदनीय कर्म का, यानी इसके ऑर्डर ऐसे क्यों रखते हैं? कहीं कहीं हमें ऐसा लगता है ना, कभी ऐसा कहते हैं कभी ऐसा कहते हैं, घाती अघाती भेद कहने हैं तो ये भेद बरोबर है, और जब ज्ञानार्थ वेदनीय ऐसे नाम लेंगे तो अंतराय को लास्ट में रखेंगे, फिर उसकी वो ऑर्डर हो जाएगा। तो इसलिए 58 पेज पर पहली लाइन में ये बता दिया, ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय आयु नाम गोत्र और अंतराय, ऐसा जो अनुक्रम से पाठ कहा वह पूर्वोक्त प्रकार से सिद्ध हुआ, यानी वो उसका कारण बता दिया यहाँ इसी क्रम से क्यों कहना है। इसकी तो बात हमने वैसे बाकी नाम वगैरह तो उसके भेद प्रभेद सब हमने कल देख लिए थे। अब थोड़ा और भी कल के बारे में कुछ बताना था। हमने दर्शनावरण के 9 प्रकृतियां देखी, उस संबंधी बहुत कुछ कंफ्यूजन है लोगों का। ज्ञान की 5 पर्याय है तो उसके 5 ज्ञानावरण के नाम तो आसानी से लोगों को पता चलता है, पर दर्शन गुण की पर्याय कितनी है? दर्शन गुण की पर्याय 4 ही, कौन सी? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो उसके आवरण वाले 4 कर्म तो हो गए, वो दर्शनावरण के तो है ही है, परंतु जो 5 प्रकार की निद्रा है उसके नाम है स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा और प्रचला, उसका क्या है? कभी उसका उदय हो या कभी उदय न भी हो। तो उदय हो तो उसका कार्य क्या है? निद्रा में जागृत अवस्था का नाश हो जाता है। अब जरा इसका स्वरूप भी देख लो, 59 पेज निकालना है, एकदम लास्ट 2 लाइन है वहां से पढ़िए, 23 की टीका। स्त्यान वृद्धि दर्शनावरण के उदय में जगाने पर भी सोता रहे, उस निद्रा में ही अनेक कार्य करे, बोले कोई सावधानी नहीं होती। नींद में कोई चल करके आता है ना, आपने सुना होगा ना, माँ बाप तो परेशान होते, बच्चे रात में चले जाते घर के बाहर, ताला लगाना पड़ता है दरवाजे को अंदर से। पुनः निद्रा निद्रा के उदय में उदय से बहुत प्रकार से सावधानी करता है, परंतु नेत्र खोलने में समर्थ नहीं है, यानी कितनी वो गाढ़ी गाढ़ी निद्रा है उसके अनुसार ये बता रहे। प्रचला प्रचला के उदय में मुख से लार बहती है, हाथ पैर आदि अंग चल रूप होते हैं। आपने शायद नींद में स्वयं भी अनुभव किया होगा या किसी को देखा होगा, नींद में एकदम ऐसा झटका लगता है, हाथ पैर कुछ हिल जाते हैं, कोई कोई तो पैर भी पटकते रहते हैं, लार भी बहती है। निद्रा के उदय में चलता हुआ खड़ा रह जाता है, खड़ा हुआ बैठ जाए, गिर पड़े, ऐसा होता है। यानी ये जो निद्रा के जो अलग अलग प्रकार बताए हैं, देखो एक एक निद्रा का उदय तो अंतर्मुख से ज्यादा नहीं होता है। आप कहेंगे क्या कहते हैं, हम तो 8-8 घंटे सोने वाले हैं ना। मैं तो कहती हूँ यहाँ जितना नींद का सुख लेना है ले लो। नहीं समझे? स्वर्ग में जाने पर ज्ञान वृद्धि निद्रा 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 प्रचला प्रचला का उदय नहीं होगा, सामान्य निद्रा प्रचला का उदय होगा। नरक में भी वो तीनों का उदय नहीं है, क्योंकि वहां तो झगड़े से फुर्सत मिले तब ना सोते। भोग भूमि में भी उसका उदय नहीं है, कहाँ जाना है निश्चित कर लो, पर कहीं पर भी ये ज्ञान वृद्धि वाली वो निद्रा नहीं मिलने वाली है। ये उदय के नियम है, देखो आपको हंसी आ रही, हम आपको बता देंगे कहाँ लिखा है। ये उदय में आई ही बात, 289 पेज निकालना, 289। देखो नरक में कौन सी प्रकृतियां उदय कौन से नहीं होती उसकी बात वहां बताइए, 289 पेज, 290 का ठीक है, उसके 290 के अर्थ में लिखा है। देखो नारकियों में कौन सी प्रकृति उदय उठ नहीं है, तो नारकियों में तो नपुसक वेदी है ना सारे, तो उससे स्त्री वेद पुरुष का उदय वहां नहीं होगा। एक बार स्यान वृद्धि वगैरह तीन का भी उदय नहीं। देखो यहाँ लिखते स्यान वृद्धि आदि तीन किसका किसका उदय नहीं है उसकी बात बताए। स्त्री वेद पुरुष वेद इन पांच को छोड़कर घाती कर्म की 42 प्रकृतियां मैंने वहां उदय रूप हो सकता। नरकायु निज गोत्र साता असाता वेदनीय नाम कर्म की उनकी यानी वो छोड़कर 42 उदय रूप है। ये कहना ये छोड़ी है ना उसका उदय नहीं है इतनी बात बतानी। अपने को पूरा नहीं पढ़ना है कितनी उदय रूप है क्या उसका हिसाब बाद में लगाएंगे। अभी तो कौन सी उदय रूप नहीं है वहां पर उसकी बात यहाँ बताएं। आगे भी देखो मनुष्य इसमें भूमि में देख लो पेज नंबर आगे 301 में देखो 301 में नहीं 299 पहले आता है 299 वहां भूमि मनुष्य में एक बात की है। तो भूमि मनुष्य में कौन कौन सी नहीं होती उदय में आती है तो देखो दुर्भग दुष्वर आना दे ओ यशस्की थी ये चार नीच गोत्र उसका उदय नहीं है। नपुसक वेद का उदय नहीं है। स्त्यान वृद्धि आदि तीन इनका उदय नहीं है। बाकी और भी प्रकृतियां बताई है यानी वहां कुछ प्रशस्त प्रकृतियों का उदय परंतु स्त्यान वृद्धि वगैरह का वहां उदय नहीं है ये बताना चाहते। भूभूमि के समान देवों में भी उसका उदय नहीं है। 301 पर लिखा है की टीका में देवगति में उदय योग्य प्रकृतियां 77 वहां भोगभूमि मनुष्यवत भोगभूमि मनुष्यवत है वो जो स्थान वृद्धि वगैरह का उसमें भी उदय नहीं है। ये बात हमने अभी देख ली। अभी अपना विषय तो यहाँ अपना चल रहा है यानी इनका उदय वहां नहीं है परंतु हम आपको जो हम नींद सोते हैं तो उसका उदय तो अंतर्मुख के लिए बताया परंतु ऐसे स्कैन वृद्धि से निद्रा निद्रा हो जाए निद्रा निद्रा से सामान्य निद्रा हो जाए कभी निद्रा से कचला हो जाए ऐसे उसका अंतर्मुत अंतर्मुत में निद्रा में वेरिएशन हो सकता है। तो हमें तो लगता है हम 8 घंटे अच्छी नींद सो गई तो अच्छी नींद आ गई कितना अच्छा लगता है इन्हें दर्शनावरण में अच्छा लगता है ना नहीं समझा। यहाँ तो कहते हैं अरे तो भगवान को ये दोष नहीं है कौन कौन से क्षुधा नहीं है तृषा नहीं है निद्रा नहीं है और हमारे ऐसा कोई दोष दोष नहीं हो गए ना हमारा कोई नींद नहीं आते हैं सुधा नहीं लगती है तो क्या करते पहले डॉक्टर की बात दौड़ते हैं हमारे दोष बराबर ठीक ठाक चल रहे हैं कि नहीं इसके हम कोमा में किसका उदय है उसमें भी वेरिएशन होगा उसके भी अंदर मुंह से उसका भी कोई उदय तो बदलते रहते
कौन से कोमा में कौन सा उदय
अभी कौन से प्रकृतियों में से निद्रा में से हाँ निद्रा में से क्या वो कायम तो वो नहीं उसका उदय होगा। कोमा को निद्रा नहीं कह सकते वो ज्ञान की वो नींदा हो गई वहां पर वैसी परंतु वहां सब यथायोग्य सभी का उदय चलेगा उसमें भी बिना दिखता चलेगी अलग अलग देखो निद्रा प्रचला का उदय तो 12वें गुणस्थान के उपांत समय तक है समझ में आती है ना वो निद्रा प्रचला का उदय वहां नहीं भी समझ में जागृत अवस्था है क्योंकि देखो ये तत्व ज्ञान की अतिशय निर्मलता जिसको कहेंगे तो निर्णय में ये जो विशुद्धि बढ़ती है कहते हैं वो तत्व ज्ञान की निर्मलता उसकी हो रही है बिल्कुल निशंक हो जाएगा तत्व ज्ञान तभी उसको समित्व की प्राप्ति होगी। कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो अभी ज्ञान के विषय में कहो या दर्शन के विषय में दृष्टि के विषय में कहीं पर भी कुछ कंफ्यूजन है तो उसको समित्व तो नहीं होने वाला तो ये ज्ञान की निर्मलता में उसको प्राप्त होगा। वो ज्ञान की निर्मलता ज्ञानोपयोग में और जागृत अवस्था में होगी वहां दर्शनोपयोग दिन बीच में आ जाएगा तो उसका विशुद्धि खंडित हो जाती है। अभी उसके लिए आपको रेफरेंस वो आगम के बहुत रेफरेंस अभी महाबंध वगैरह के बहुत सारे या जहाँ विशुद्धि कम हो जाती है दर्शनोपयोग में यानी बीच में दर्शनोपयोग को भी नहीं लेते हो
दर्शनावली में जो पांच वेद कल मैं पूछ रहा था हाँ
हाँ, ये आपको प्रश्न है। दर्शनोपयोग का घात नहीं होता, उसका प्रतिपक्षी जागृत अवस्था का घात होता है। कहीं कहीं दर्शन का घात ऐसा कह देते हैं कोई भी, परंतु हम विचार करें ना, उसका प्रतिपक्षी कौन है? जागृत अवस्था। यानी ये पांच निद्रा में से कोई एक निद्रा, देखो दर्शनावन के जो उदय के नियम है उसमें तीन किए तो क्षणिक भाव होते हैं ना, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। वो तो उसके आवरण के क्षणिक में ही उसके हो रहे हैं। केवल दर्शन जो है वो क्षणिक भाव है, और निद्रा का उदय है या उसका अनुदय है, बस इतना ही
है।
दर्शनावर्णीय है तो उसको निद्रा का भेद वो दर्शनावर्णी क्या है, वह मंद हो जाते हैं, परंतु अभाव तो नहीं होगा, किसी दर्शन का घात नहीं हो सकता, क्योंकि दर्शन का घात मानेंगे हम तो फिर दर्शन के बिना ज्ञान का भी घात मानना पड़ेगा। उदय अनुदय और बाद में क्षय, निद्रा का क्षोक्षम भी नहीं है, सर्वघाती का क्षोक्षम कभी नहीं होता। एक जगह आया है समयता में निद्रा का क्षोक्षम, वो बात बराबर घटित नहीं होती है, मूल संस्कृत में दिया है। हाँ, अभी हम आगे बढ़ेंगे।
निर्विकल्प अनुभूति में निंद्रा और ये कचला की जो अपन बात कर रहे हैं, मतलब ये दोनों ऐसा भी हो सकता है कि ये पांचों का कभी उदय न भी हो संसार अवस्था में?
पांचों का उदय
ना, ऐसा है कि नहीं? उसका तो
कभी कभी जब जागृत अवस्था में कहीं उसका उदय नहीं होता, उदय उसका चार का होगा या पांच का होगा, ये नियम है। जागृत अवस्था में चार का उदय और निद्रा में पांच का उदय, यानी अभी आपको उसमें से किसी एक का उदय नहीं
होगा, का उदय रहेगा, रह सकता है,
अभी रहता ही, अभी केवल दर्शनावरण का उदय है।
ये पांच में,
हाँ,
जागृत अवस्था में ये निद्रा संबंधी जो पांच प्रकृति है,
एक का भी उदय ना हो ये बनता है,
ऐसा बनता है,
बनता है
संसार अवस्था में
बिल्कुल। इसे भी हम जागृत है अभी तत्व में सीख रहे हैं, इसमें से एक का भी उदय नहीं है, यानी उसके ऐसे अवस्था उदय हो या अनुदय हो, अभी सजातीय रूप से अन्य रूप से उदय में वो आती रहती है। जैसे बंध का नियम है हर समय, नहु का बंध का नियम है मिथ्या दृष्टि को, है हर समय उदय का नियम नहीं है, ये
बंद हो रहा है।
देखो अभी हम आगे बढ़ेंगे, ये हम कल के पॉइंट्स में से कुछ विशेष पॉइंट आपको बता रहे थे। हमने दर्शन होने की तीन प्रकृतियां देखी थी, याद है ना, कौन से? मिथ्यात्व, समय मिथ्यात्व और समय प्रकृति। तो बनने वाली कौन सी थी, हमने देखी थी मिथ्यात्व ही बनती है, अनादि से बनने वाली है प्रकृति मिथ्यात्व। तो अन्य दो प्रकृति कब तैयार होती है? हाँ देखो, ये नियम है जो अनादि का मिथ्या दृष्टि है उसको पहली बार समय तो होता है, तो उसको कौन सा प्रथम ऑप्शन समय तो ही होता है, उसमें वो पांच लब्धि सभी कंडीशन लागू हो जाएगी। तो प्रथमोपशम सम्यक्त के पहले समय से लेकर मिथ्यात्व के परमाणुओं का अनुभाग घटकर अनंत गुणाहीन होकर ऐसी प्रकृति तैयार होती है, अनुभाग ऐसा होता है, उसको हम कहेंगे सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है, वो भी सर्वघाती। सर्वघाती क्यों? सम्यक्त का घात करने वाली, उससे भी अनुभाग और अनंत गुणाहीन होकर सम्यक प्रकृति तैयार होती है। वो कैसी है? पूरी देशघाती है, उसमें कोई सर्वघाती स्पर्धक नहीं है। तो अभी जो प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि है वो सारा दर्शन होने उसका उपशमित है, उदय रूप नहीं है, उपशमित अवस्था में उसका एक संक्रमण, अनुभव के संक्रमण से और दो प्रकृति तैयार होती है। उदय तीनों में से किसी का नहीं है, पर अभी सत्ता में तीन आ गई है उसके दर्शन होने की। अब जब वही उसका उपशम का काल अंतर्मूर्त होता है, कल कोई बात करेंगे कि उपशम का अर्थ ही होता है कि नियम से छूट जाता है, परंतु उपशम के बाद मिथ्यात्व में जाना पड़े ये कोई जरूरी नहीं है। औपशमिक समय दृष्टि क्षयोपशमिक समय दृष्टि हो जाता है, उसके लिए कुछ अन्य कार्य नहीं होता, बस सहज समय प्रकृति का उदय रहता है, अन्य दो का अनुदय रहता है और उसका क्षयोपशम समय तो बना रहता है। अब ऐसा जो मिथ्यात्व में भी आ जावे तो भी उसकी वो दो प्रकृतियां रहती है, असंख्यात वर्षों तक रहती है, भले वो मिथ्या दृष्टि रहा तो भी उसकी सत्ता में वो दोनों का, यानी सत्ता आ जाती है उसकी। अभी वही जो अंतर्मूर्त में फिर अंत वेदक समय दृष्टि भी हो सकता है, अभी सबका एक साथ उपशम करने की योग्यता उसकी नहीं है, क्योंकि अभी उसकी स्थिति बहुत है। अभी उसके डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि अपना वो विषय यहां पर नहीं है। अंतर्मुख में दुमारा वो समय तो प्राप्त कर सकते हैं, कोई समय दृष्टि है प्रथमोपशम के लिए वो कंडीशन सभी होती है, वो तो ठीक है, परंतु अभी वो समयत्व में से गिरकर मिथ्यात्व में आए, तो इतने छोटे लघु काल में फिर दोबारा समयत्व प्राप्त करे तो बिना कर्म के भी करेगा। और उसका कितना काल है छोटा मालूम है? वो कितना अंतर्मुख है? शूद्र भाव से भी छोटा है। शूद्र भाव यानी वो तो सेकंड का, चांद का 18वां भाग मैंने हमने कैलकुलेट किया था ना, सेकंड का 23वां 24वां भाग, उससे भी छोटा काल है सम्यक्तो से मिथ्यात्व में आकर दोबारा सम्यक्तो प्राप्त करने का। यानी मिथ्यात्व में आया तो संकलेश से आएगा, फिर कुछ काल तक उसके वो विशुद्धि की ओर बढ़ेगा, विशुद्धि बढ़ने के बाद फिर सम्यक्त की ओर उसके सन्मुख होगा। ये सब कार्य उसका इतने छोटे काल में हो सकता है। केवल ज्ञान गम्य नहीं है, करना नियोग पढ़ने से तो केवल ज्ञान की महिमा और आती है, नहीं तो हम खाली सर्वज्ञ केवल ज्ञान ही कहते हैं। परंतु इतनी अभी नवे गुणस्थान का अकेला स्वरूप जानने जाओ, कितनी बार कहते हैं संख्या हजार ये होते हैं, कांडक होते हैं, ऐसा होता है, ऐसा सब मिलकर भी नवे के एक छोटे अंतर्मुख में समा जाते हैं। यानी संख्या हजार कहते हैं परंतु वो अनेक कोड़ा कोड़ी बार हो जाते हैं, और एक एक के लिए अंतर्मुख, और एक स्थिति कांडक में अनुभाग कांडक और हजार होते हैं। यानी उसका स्वरूप ऐसा, यानी हमारे कल्पना के बाहर हो जाता है इतना सारा।
जो समय से छूट के मिथ्यात्म आया और फिर वो जो समय बताया उसमें फिर समय तो पहुंच गया, तो उसको मालूम ही नहीं पड़ता होगा कि मैं गिर गया तो।
हाँ, इतना छोटा काल है कि उसके पकड़ में आ जाएगा। हाँ, कोई ऐसा यानी ऐसा ऐसा विचार पूर्वक नहीं है, परंतु वो छूट गया है फिर प्राप्त हो गया, ऐसा कुछ जिसको कहीं आनंद का वेदन तो छूट ही गया था उसका, और फिर दोबारा आनंद है वैसा का वैसा जैसे प्रथमोक्षम समय में हुआ वैसा नहीं है, परंतु उसकी वो दृढ़ता हो जाती है। देखो ऐसा लगता है ना कि इतना अभूतपूर्व पुरुषार्थ किया, समय दर्शन प्राप्त हुआ, वो गिर कैसे सकता है? हो सकता है किसी अनंतानुगत जैसे कषाय का उदय, निशा का उदय आ जाए, प्रकृति के कारण जीव के स्वयं के परिणाम बिगड़ जाते हैं तो उसका उदय कहलाता है। ये सारे कर्मों की जो अवस्था है वो जीव के परिणामों को बताने वाली है। जीव पराधीन होकर इनके कर्मों के अनुसार नहीं नाच रहा है, जैसे हम समझते हैं उस वहां इसका उदय हुआ इसलिए कहने की पद्धति है, ये उसका उदय हुआ जीव मिथ्यात्व में गिर गया, उसका उदय हुआ इसलिए जीव तीसरे में आया, जीव के परिणाम वैसे हुए क्योंकि एक समय में दोनों कार्य हो रहे। आप पहले दर्पण के सामने जाते हो क्या? पहले वहां प्रतिबिंब आता है आपका, क्या होता है? पहले दर्पण के सामने जाते हैं, बरोबर है? हाँ, तो बाद में वो प्रतिबिंब दर्पण बुलाता है, चलो आओ प्रतिबिंब को आओ। एक समय में दोनों कार्य, फिर भी हम कहेंगे नहीं ये इसको आरोप करेंगे, इसको पहला कहेंगे, उसका चार करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर कर्मों पर आरोप देते हैं कि उसका उदय आया इसलिए जो में ऐसा हुआ, एक समय में दोनों होते हैं, ऐसा नहीं कि वो पहले आते तैयार हो गए हैं, हाँ अभी जीव को करना पड़ा, ऐसा नहीं है। चलो चलो अभी अपना विषय अंदर बहुत हुआ। ये मुनियों के भी जो ज्ञान वृद्धि वगैरह का उदय ना तीन का छठे तक है, सातवें में उसका उदय नहीं है, उसकी उदय की विशुद्धि छठे में हो जाती, उदय की। हाँ, बंद की नहीं बोल रही, उदय की। बारहवें के उपांत में अभी देखो ना, जो सम्य दृष्टि का ऐसा ही है, और श्रेणी में तो विशेषता होती है अनुभाग कांडक जिसको कहते हैं, जितना अनुभाग है अप्रशस्त कर्मों का, अनंत गुणाहीन होता है, अनंत गुणाहीन होता है, अनंत गुणाहीन होता है, अनंत वो अंतर्मुख इतने छोटे हैं और करोड़ों 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 बार होता ही रहता है, होता ही रहता है, तो उसमें नहीं के बराबर अनुभाग रहेगा कि नहीं? जैसे पहले गुणस्थान में जो निद्रा प्रचला का जितना अनुभाग होगा, पल्लन शक्ति होगी, और वो श्रेणी में बानवे गुणस्थान में जो होगी उसकी कितना अंतर होगा? अभी वो निद्रा प्रचला रूप से बंदी हुई है उसको निद्रा प्रचला कहेंगे, नहीं के बराबर है। जैसे केवली को भी असाता का उदय है चौदहवें गुणस्थान तक, तीर्थंकर की बात नहीं कर रहे, सामान्य केवली की बात कर रहे, तो वो कैसा है, नहीं के बराबर होगा, परंतु है वहां पर। हाँ, इसलिए उनके वो एकादश जिन्हा कहेंगे परिश्रम ही बताए गए 11 परिश्रम है, उसका कारण वहां कर्मों की उपस्थिति है, बस इतना। हाँ, अभी हम कल एक प्रश्न आया था किसी का कि सीता का जीव कहाँ गया मरकर, आपने पूछा नहीं? हाँ, किसी ने पूछा था, कौन से स्वर्ग में गया? प्राणत में गए ना, अच्युत में, तो वहां कैसे गया ये प्रश्न था। तो हमने कल सहनन के नियम देखे थे, आपको याद है ना, कौन सा सहनन वाला कहां तक जाता है? तो नीचे के तीन सहनन वाले हैं, उसमें से वो अर्धनाराज वाला है, वो कहां तक जाता है? 16वें स्वर्ग तक। देखो नहीं तो निकालो, कल हमने देखा पेज नंबर 65, नहीं नहीं 64 देखना, पेज नंबर 64। हमने ये बात देखी कि छठा सहनन वाला है ना, असम्राट सुपाटिका वाला, वो कहां तक जन्म ले सकता है? लांतो का विषय तक। लांतो का विषय कौन सा नंबर हुआ? 8वां हुआ ना। उसके ऊपर दो युगलों में शतार युगल तक खीलित सहनन युक्त वहां तक जा सकता, वहां तक वो नीचे जा सकता है, अपर लिमिट उसकी वहां तक है। खीलित सहनन वाले कहां तक? शतार सहस्रार तक, यानी 12वें तक। उसके ऊपर दो युगलों में आरण अच्युत तक अर्धनाराज सहनन युक्त जीव उपजता है, अर्धनाराज वाले वहां तक जाते हैं। अभी सीता का जीव अधिक आता पंचम गुण स्थान वर्ती, वहां तो 16वें स्वर्ग तक तो जाते ही जाते हैं, और वहां अर्धनाराज सहनन वाले होगी तो वहां गए उस योग्य शुक्ल वेशा में, वहां का आयु का बंद करके वहां चले गए, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। सहनन के निमित्त तो ये स्त्रियों में नीचे के तीन सहनन होते हैं, तो उसमें से वो होगा तो दोनों वहां जी वो गया, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। अभी ये क्या प्रश्न है? विसर सोचे का प्रश्न बहुत आया, विसर सोचे इतना ही लिखा है। चलो उपचय यानी संचय, विसरसा यानी नेचुरल, वैसे से ऐसा आता है ना शब्द, विसरसा यानी नेचुरली जो होता है संचय होता है। क्यों? परमाणु परमाणु के साथ क्यों जुड़ते हैं? नियम क्या है उसके? निग्रह उसके जो दो का डिफरेंस है उसके कारण वो एक दूसरे के साथ उनका बंध होता है। तो कर्म के परमाणु है उनमें भी स्निग्धत्व रुक्षत्व है कि नहीं, अपना अपना जो कुछ रखा है और अन्य भी जो परमाणु उससे कुछ हमारे से कुछ नहीं लगते हैं उन परमाणु में भी स्निग्धत्व रुक्षत्व है, ये बात सही है ना। तो उसके वो अपने स्निग्धत्व रुक्षत्व के कारण एक एक कर्म परमाणु के साथ अन्य अनंत परमाणु उसके साथ बंधे हुए हैं। क्यों? स्निग्धत्व रुक्षत्व के साथ। कितने? एक परमाणु के साथ जीव राशि से अनंत गुणे परमाणु उसके साथ एक एक परमाणु के साथ जुड़े हैं। तो कर्म परमाणु कितने पड़े हैं सत्ता में, और हर एक परमाणु के साथ इतने, तो टोपल और वो स्कंद उसी, ऐसा नहीं कि इसके बाहर कुछ स्प्रेड हुआ है, वहीं पर है ना। हाँ, उसी क्योंकि आकाश के अवधान ही इतना है कि इन्हीं प्रदेशों में ये सब पड़े हैं, उसको कहते हैं विसरसोपचय। ऐसे कर्म परमाणु के साथ यानी जो कर्मरूप परिणमित हुए उनकी बात कर रहे हैं, यानी जो कारवाण स्कंद पूरा है उसका अपना विसरसोपचय है, जो तेजस शरीर रूप जो स्कंद है उसका अपना विसरसोपचय है, अवधारी क्या वैक्रिय शरीर वाले उनका उस शरीर का अपना विसरसोपचय है, यानी ये मूल शरीर तीन अवधारी है तेजस कारमान है या वैक्रिक तेजस कारमान है, उन तीनों के अपने अपने सहित तो छह छह राशियां यहाँ जीव के साथ पड़ी है, उसको विसरसोपचय कहते हैं। विसरसोपचय उपचय परमाणु का, और उसी में से कितने परमाणु ले भी लेगा या जो विसरसोपचय रूप से नहीं है उसमें भी कितने परमाणु, क्योंकि देखो परमाणु की संख्या कितनी अनंतानंत है वो सब बात आएगी अभी बंद के प्रकरण, उसमें सादि द्रव्य अनादि द्रव्य सब चर्चा करेंगे। तो ये प्रश्न हो गया, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। कल हमने ये जो बंध योग्य की बात देखी थी ना, बोर्ड पर देख हमने बनने योग्य प्रकृति 120 टोटल 148 में से हमने बंधन को संघात को कम कर दिया था 100 वो कम हो गए और वर्णादि 20 लेने के बदले हमने 4 लिया तो इसे 26 कम करके 122 का हिसाब होता है परंतु बनने वाली में सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व नहीं बनती तो बनने में हिसाब कितने का है 120 का तो 120 प्रकृतियां बंधनी होती है अब उसमें से ध्रुवबंदी कल हमने आपको बताई थी 47 ध्रुवबंदी है ये घाती कर्म भी 47 है उसकी बात नहीं है मेरे ख्याल से 47 आंकड़ा कुछ विशेष है ना आत्मा की 47 शक्ति है तो गोपाल में हमने लिए थे ना 47 शक्तिवान हुए थे अपना शिविर हुआ था 47 नए भी है ये ध्रुवबंदी भी 47 है और वो घाती कर्म भी 47 है ना अच्छा उपादान निमित्त 42 होता है 47 है तो ये ध्रुवबंदी कौन सी है कि जो अनादि से ही इनका बंध होता आया है कब तक होता रहेगा अपनी अपनी बंध निश्चिति तक तो ऐसी 47 प्रकृतियां कौन सी है तो ज्ञानावरण की 5 है दर्शनावरण की 9 है यानी इसका अर्थ क्या है मिथ्या दृष्टि है और वो 9 के 9 प्रकृतियां हर समय बांध रहा है उदय तो 4 या 5 का होगा हमने देखा था बंध हर समय 9 का हो रहा है अंतराय 5 की 5 हर समय बन रही है तो ये हमने 19 अवलंबी कर दी आपको आसान तरीका बताया मोनी की 19 किनो कौन सी मिथ्या तो 16 कषाय 17 हुए भय जुगुप्सा हर समय बनती है वो 19 और 19 38 हो गई अब नाम करूंगी 9 जो हर समय बनती है उसमें से तेजस शरीर कारमान शरीर अगुरु लघु उपघात निर्माण और वर्णादि 4 कितने हुए 9 इन 47 प्रकृतियों को ध्रुवबंधी प्रकृति कहते हैं अब 120 में से ये 47 माइनस कर दो तो जो ध्रुवबंधी नहीं हो क्या कहेंगे हम उसको अध्रुवबंधी वो कितनी उसके नंबर 73 वो अध्रुवबंधी में फिर हम 2 भेद करेंगे अप्रतिपक्ष यानी इनका कोई प्रतिपक्ष नहीं है प्रतिपक्ष कैसे साता या असाता स्थिर या अस्थिर शुभ या अशुभ ये जो होते हैं ना उसको प्रतिपक्षी कहते हैं तो ये ऐसी प्रकृतियां है 11 कि इनको कोई प्रतिपक्ष नहीं है फिर भी ये ध्रुव नहीं बनती किसी के बंधेगी कभी कभी बनेगी और ये जो है प्रतिपक्षवादी सप्रतिपक्ष ये 62 प्रकृतियां तो ये 11 प्रकृति कौन सी है तो इसमें से भी 7 और 4 ऐसे 2 भेद करके लिखे हुए हैं वो ऐसे कौन से हैं तो 7 प्रकृतियां ऐसी है बनती है तो मिनिमम अंतर्मूर्त तक तो बंधेगी बंधेगी एक समय के लिए बंध होके नहीं रुकेगी और वो 4 ऐसी है एक समय के लिए भी बंध हो सकता है इसका और उसका ही बंध कंटिन्यूस होता ही है ऐसा भी नहीं एक समय होकर भी रुक सकता है अंतर्मूर्त भी होकर रुक सकता है उसके अलग नियम है तो ये 11 में से 7 कौन सी है एक है तीर्थंकर प्रकृति आप कहेंगे मिनिमम अंतर्मूर्त कैसे बन सकती है तीर्थंकर प्रकृति किसी को बंधेगी अंतर्मूर्त तक ही बंधेगी और बस हो गए ना सिंगल के लिए आप बताएंगे तीर्थंकर प्रकृति अंतर्मूर्त तक ही बंधी ऐसा किसका हो सकता है मृत्यु आ गई तो देव में जाके बांधेगा ना हाँ मिथ्यात्व की अंतर्मूर्त के रुक गया था हम अंतर्मूर्त तक बंधने वाली पूछ रहे हैं हाँ बोलो
सम्यक दर्शन प्राप्त किया
हाँ
और केवल के पास में उसमें समय दृष्टि था
बाकी चीजें छोड़ दो उसने तीर्थंकर प्रकृति बांध दी फिर क्या हुआ
मरण होना है उसके समय में उसी समय में उसका मरण होने वाला था तो अंतर्मुख के लिए रुका और फिर तो
बाद
में वेदक हो जाएगा तो भी बनता रहेगा हाँ देखो उसने बांधना शुरू किया और श्रेणी चढ़ना चालू कर दी। तो आठवें गुणन स्थान में उसका बंध विच्छित्ति हुई, फिर नौवे दसवें ग्यारहवें करके फिर वापस नीचे तक आया, आठवें में आया तो बांधना चालू किया, हाँ फिर यथा योग्य मरकर देव में भेजे उसको चलेगा, अपने को बांधना नहीं है। नहीं वो जीव अलग, वो श्रेणी नहीं चढ़ सकता जिसने नरकायु पहले बांधी,
हाँ
वो हो सकता है, परंतु उसका बड़ा का छोटा काल अगर लेना है तो वो वहाँ लेना पड़ेगा।
और जो दो कल्याणक वाले होते हैं,
हाँ ठीक है, वही तो उन्होंने कहा ना, कितने कल्याणक वाले उसे कुछ मतलब नहीं, उसने बांधना बंध का प्रारंभ कर दिया अंतर्भूत में उसने श्रेणी चढ़ी, ये हो सकता है। हाँ ये तो हमने सात प्रकृति गिनना है उनको, एक है कीर्तंकर, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग जिसको आहारक द्विक कहते हैं, और चार आयु। तो आयु कितने समय तक बनती है, कोई भी आयु अंतर्मुख से ज्यादा नहीं बनती, कभी कभी बनती है, बोले 33 सागर की भी आयु क्यों ना, अंतर्मुख में सारे 33 सागर के परमाणु इकट्ठे कर लेते, तो अंतर्मुख तक मिनिमम भी और मैक्सिमम भी आयु का बंध अंतर्मूर्त ही होगा, उससे कम भी नहीं होगा, यानी उसमें ही ना दिखता होगी अंतर्मूर्त छोटा बड़ा, परंतु अंतर्मूर्त से अधिक काल तक आयु का बंध नहीं होता। और ऐसा भी नहीं होता एक समय दो समय के लिए आयु का बंध हो फिर रुका हो तो आराम करो, ऐसा नहीं होता, अंतर्मूर्त तक तो बंधे ही बंधे। अभी हमने क्या क्या देखा, हाँ ऐसा नहीं, उसकी जो लेशा वो तो है ही है, परंतु आयु का बंध का काल ही अंतर्मूर्त है, उसी लेशा में बंधेगी वो, आयु के बंध के योग्य जो परिणाम बताए वैसे उसमें हो जाएगी बात। तो हमने सात कौन सी रखी, तीर्थंकर, आहार, द्विक और चार आयु, और बाकी चार कौन सी है, परिहास है, उच्छ्वास है, आतप है और उद्योग है। वो हो सकता है एक समय के लिए भी बंद हो जाए, रुक जाए, उसके लिए कंडीशन जरूरी नहीं कि अंतर्मुख तक बनता ही है, ऐसी जरूरी नहीं है, बन भी सकती है, जरूरी नहीं है। अब ये जो सब प्रतिपक्ष वाली है 62 है ना, तो इसको याद रखने के लिए आप उसमें भी कहोगे वेदनी की दो है, गोत्र की दो है और मोनी की 7 है, 11 हो गई ना ये भी, और बाकी कितने बचेगी 51। अब नाम कर्म की तो हमने याद की थी, उसमें जो ग्रुप पिंड वाली है उसको याद करो, गति है वो 4 प्रकार की गति है, 5 जाति है, फिर शरीर में औदारिक या वैक्रिक शरीर, औदारिक अंगोपांग या वैक्रिक अंगोपांग, ये अंगोपांग हुए, 6 संस्थान है, 6 सहनन है, 4 अनुपूर्वी है, 2 विहार गति है, और फिर बाद में वो तो संस्थान सहनन वो बता दिया ना, त्रसादी जो होते हैं ना युगल, 4 युगल है, 8 तो वो हो जाएगी, 3 वेद मोनी में जाएगी, हम नाम कर्म की गिन रहे, त्रसादी 4 युगल यानी 8 प्रकृति, और स्थिरादी 6 युगल यानी 12 वो हो जाते हैं, इस तरह से ये कम हो जाती है, इसको सब प्रतिपक्ष कहेंगे। आगे बढ़ते अभी हम आए थे पेज नंबर, ये दूसरा अधिकार शुरू हुआ था ना, और हम जम करके वो शादी आना भी देखने के लिए गए थे आगे, है ना, अभी यहाँ 104 पृष्ठ पर आए, इस शादी अनादि की बात फिर आगे कभी उठाएंगे, हर समय वो स्थिति बंध के प्रकरण में, प्रदेश बंध के प्रकरण में, तब उसकी चर्चा फिर दोबारा होगी।
ये जो ध्रुव बंदी 47 और अध्रुव बंदी 73 बताए, इन दोनों में ये दोनों अलग अलग सिस्टम ही सापेक्षता से बताए, बाकी जितनी ध्रुव बंदी उसको अध्रुव तो कहेंगे ही, वो मतलब अध्रुव के खाते में भी आएगी।
हाँ ध्रुव बंदी का बंध कैसे हो सकता है, क्या अनादि का है, तो कहते हाँ अनादि का है, क्या शादी हो सकता है, हाँ कब, अपने बंध विच्छित्ति करके ऊपर के गुण स्थान में जाके और वापस नीचे आए तो उसको हम शादी कहेंगे, वो क्या ध्रुव है, हाँ क्योंकि जिन्होंने बंध विच्छित्ति नहीं की ऐसे अभवियों के लिए वो ध्रुव कहेंगे, क्या वो अध्रुव है, हाँ है, क्योंकि जिसने बंद में चित्ती करके बंद का अभाव किया था प्रॉविस बंद किया, तो कभी बनती थी कभी बंद नहीं बनती थी, इसलिए अधूर कह गई। या बंद का अभाव करके श्रेणी चढ़ के मोक्ष गया, इसके भी उसको अधूर कह गई। ध्रुवबंदी की अपेक्षा से अपनी बंद विच्छित तक ये बनती ही रहती, हर समय बनती है। जैसे हमने गति वगैरह में क्या था, वो सब प्रतिपक्षी ने ऑप्शनल बनती, बनती तो है, गति हर समय बन रही है। कैसी बन रही? देवगति बनेगी या नरक गति बनेगी या ऐसा कुछ, उसमें ऑप्शन है। समझ में आती है? अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ एक उदाहरण भी दिया था 104 पर, उसको देख लेते हैं। सप्तम नरक पृथ्वी में, पहली लाइन 104 नंबर का प्रश्न, पेज नंबर 104। सप्तम नरक पृथ्वी में प्रथमोपशम सम्यक्त्व के सन्मुख हुआ मिथ्या दृष्टि जीव। देखो सातवीं पृथ्वी है, उसका कुछ नियम है। क्या नियम है? अन्य नरकों में जीव कौन सी गति बांधता है? नारकी जीव या तो मनुष्य गति बांधता है या टीनेजर। मिथ्या दृष्टि की बात करें, समय दृष्टि तो मनुष्य गति को बांधते, नारकी समय दृष्टि मनुष्य गति को ही बांधेगा। परंतु जो मिथ्या दृष्टि नारकी है वो एक अंतर्मूर्तक मनुष्य गति बांधेगा, एक अंतर्मूर्तक तीन गति बांधेगा। आयु का अवसर होगा तब जो बांधेगा वो बात अलग, हम आयु की बात नहीं कर रहे। सातवें नरक की ये विशेषता है, वहां मिथ्या दृष्टि जीव मनुष्य गति को बांध ही नहीं सकता। हाँ, वहां सम्यक दर्शन होने पर मनुष्य गति को बांधेगा, पर मरण के पहले उसका समय तो छूटने ही वाला है, और वो तीरेंज आयु तीरेंज गति बांधकर तीरेंज में ही जाने वाला है नियम से। इसलिए सातवें नरक का नारकी जब तक सम्यक तो प्राप्त नहीं कर रहा है तब तक वो क्या बांध रहा है? तो तीर्यंच गति नीच गोत्र वगैरह बांध रहा है। यही बात यहां बता रहे कि प्रथमोपशम सम्यक्त्व के सन्मुख हुआ मिथ्या दृष्टि जीव वहां मिथ्यात्व गुण स्थान के अंतिम समय में नीच गोत्र के जघन्य अनुभाव को बांधता है, क्योंकि नीच गोत्र का बंध तो अन्य प्रथमोपशम सम्य दृष्टियों के लिए पहले रुकता है। जो प्रायगिलब्धि के स्थान है ना, आपने आपको अभी याद होगा, तो कुछ कुछ प्रकृतियां बंधने से रुकती चली जाती है, बंधाक्षरम जिसको कहते हैं। हाँ, तो उसमें तो तीर्यंज गति नीच गोत्र आदि का बंध रुकते चला जाता है। ये बात कहाँ होती है? सभी में होती है, मनुष्य तीर्यंज देव नारकी अन्य नारकियों में होती है। सातवें नरक में क्या होता है? वो तीर्यंज गति और नीच गोत्र का बंध अंतिम समय तक करेगा, कौन से करण लब्धि के अंतिम समय तक। हाँ, वहां उसका अनुभव कैसे बनेगा? क्योंकि विशुद्धि बड़ी है, बहुत अत्यंत हीन बनेगा, अप्रशस्त प्रकृति है ना, उसका अत्यंत हीन जघन्य अनुभव बनेगा। तो सातवें नरक का प्रथमोपशम सम्यक्त्वी जीव करण लब्धि के अंत समय में जघन्य अनुभव बांधेगा नीच गोत्र का। अनादि से कैसा अनुभव बांधता आ रहा था? अजघन्य, जघन्य नहीं, वो अजघन्य, हम उसको उत्कृष्ट वो उसकी बात नहीं करेंगे, उत्कृष्ट भी बांधा उसने बहुत, अभी जघन्य कब बांधेगा? वो सातवें नरक में। अन्य तक कैसा बांध रहा था अभी तक? अजघन्य। तो उसका अजघन्य कब से था? अनादि से। जघन्य के लिए आदि है उसके, समझ में ना। और फिर वो समय दृष्टि हो गया, अब वो समय तो से छूटकर फिर नीचे मिथ्यात्व में आया, तो क्या अभी जघन्य बांधेगा? अभी नहीं, अजघन्य बांधेगा। तो अजघन्य अनादि का था पहले, अब बीच में जघन्य हुआ, फिर नीच गोत्र का बंध भीड़ भी गया क्योंकि समय दृष्टि हुआ, तो उच्च गोत्र बांधने लगा, फिर वो नीचे आया तो उसे नीच गोत्र बांधने लगा, अभी कैसा बांधने लगा? अजघन्य, क्योंकि अभी इतना अनुभव हीन वाला नहीं बंधेगा, अजघन्य बंधेगा। पहले अनादि का था, फिर बंधना रोका और फिर नीचे आया तो अजघन्य बांधने लगा, तो शादी हो गया। जो अनादि का बांधता ही रहता है उसका ध्रुव रहेगा अजघन्य, समझ में आएगा। और जो बीच में समय को प्राप्त करके नीचे आया है उसका अध्रुव होगा। इस तरह से इसको यहाँ घटित कर दिया। अब जब अनुभव की चर्चा आएगी तो ये ज्यादा क्लियर होगा, परंतु तो यहाँ इन्होंने लिखा है इसलिए यहाँ से ही पढ़ लेते इसको। अब आगे हम गुण, ये प्रकृति बंध के नियम और प्रकृति बंध की विच्छित्ति वगैरह की बात अभी करेंगे। देखो वैसे बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, जब जीव समय को प्राप्त करता है तो हमने तो यहाँ देखा 120 बंधने योग्य प्रकृतियां है, इसमें से तो कितनी प्रकृतियां बंध से रुक जाती है पहले से चौथे में जाते ही 41 प्रकृतियां, और हम आपकी बात करेंगे तो उसमें 6 प्रकृतियां और मिला दो 47 प्रकृतियां नहीं बंधेगी मनुष्य तीरियन चौक के लिए। वो कौन सी वो देखेंगे, पहले सामान्य से बात करेंगे फिर मनुष्यों की विशेषता अलग से बताएंगे। तो कौन से गुणस्थान में कितनी बनती है, जो ऊपर के गुणस्थानों में नहीं बनती उसको कहेंगे उस गुणस्थान में इतनी प्रकृतियों के बंध की विच्छिति, यानी बंधना रुक गया, आगे के किसी भी गुणस्थानों में उनका बंधन नहीं होता। ये जब ये सम्यक तो प्राप्त करेंगे ना तब इसको बंध की विच्छिति कहेंगे, नहीं तो आप कहेंगे जब हम साता बांध रहे हैं तो असाता नहीं बन रही है अंतर मूल तक, उसकी बंध विच्छिति हुई कि नहीं हुई। नहीं तो ऐसा भी कहेंगे जब असाता बांध रहे तो क्या हुआ, साता की बंध विच्छिति हुई, नहीं हुई, वो अंतर्मूर्त बदलती रहती है, उसका बंधना रूप बदल बदल कर होता ही रहता है। अब यहां हम देखते हैं इसको नियम कुछ बताएंगे 92 की टीका पेज नंबर 104। तीर्थंकर प्रकृति का बंध, यानी बंध के कुछ नियम बता रहे कि कौन से गुणस्थान में बनते हैं उसकी कुछ चर्चा करें। मिथ्या दृष्टि को, दूसरे को, तीसरे को तो उसका बंध नहीं है, कहाँ बंध हो सकता है तो वो बता रहे। असंयत से लेकर यानी चौथे गुणस्थान से लेकर अपूर्वकरण यानी जो आठवां गुणस्थान है उसके छठवें भाग तक सम्यक दृष्टियों में ही होता है, ये सारे सम्यक दृष्टि के ही गुणस्थान है उनमें हो जाता है। मिथ्या दृष्टि को ये प्रकृति नहीं बांधती, और जो चाहते हैं ना हमको ये चाहिए बंध उसको तो नहीं बंधेगी, क्योंकि बंध को चाहने वाला उसके तो बंध तत्व संबंधी भूल चल रही है, सात तत्वों का भी निर्णय नहीं, उसको मान्यता सही नहीं है, तो उसको समय दर्शन होने का सवाल नहीं है, ना ही उसको तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी। कोई क्यों बांधना चाहता है तीर्थंकर प्रकृति? अरे बिना तीर्थंकर प्रकृति वाला 13वां गुणस्थान अंतर्मूर्त में पार कर सकता है, और तीर्थंकर प्रकृति का तो नियम बनता है तो नियम से उदय होना पड़ेगा, तो उसके लिए पृथक्त्व वर्ष का नियम है, कुछ वर्षों तक तो उसको 13वें में रहना पड़ेगा, वो समोचन सब आदि सभी बातें होगी होगी, प्रकृति बंदी तो उदय होकर ही रहेगी अभी है ना, क्योंकि इसको ये यश का या जो कुछ मान सम्मान का कुछ पड़ा है ना उसके पीछे अभिप्राय में पड़ा है, इसलिए उसको तीर्थंकर प्रकृति चाहिए है। अरिहंत अवस्था में जघन्य काल, वही तो मैंने कहा पृथक्त्व वर्ष, पृथक्त्व वर्ष में 3 से 8 ऐसा भी आता है, कभी कभी पृथक्त्व से ज्यादा भी कह ले यथा योग्य समोषण, यानी कुछ वर्षों का काल तो नियम से होगा ही, उनका समोषण वगैरह सब लगेगा। बंध नहीं, उदय का 13वें गुणस्थान का काल, यानी उस तीर्थंकर पद में कितने साल तक रहेगा, अभी महावीर भगवान कितने काल तक, यानी केवल ज्ञान होने के बाद कितने साल रहे, वो 12 साल रहे ना, 12 वर्ष, तो उसको हम पृथक वर्ष कह सकते हैं ना। और आदिनाथ भगवान कितने काल तक रहे, 83 लाख पूर्व के बाद तो उन्होंने दीक्षा अंगीकार की बाद में, हाँ वो तो तब की बात है, तब की बात नहीं कही, उसमें उसमें माइनस कर दो ना, तो इतने वो साल तक तीर्थन कर रहे। कोई कभी अगले तीर्थन कर कितने साल में हो सकता है, करोड़ पूर्व की आयु लेके आया और 8वें साल के बाद संयम धारण करके श्रेणी चढ़ के 13वां गुणस्थान प्राप्त कर दिया, हो सकता है, तो उतना उसका 13वें का काल होगा, 14वें का माइनस करो उसमें से। हाँ हो जाएगा उदय लंबा, जब जब से केवल ज्ञान प्राप्त किया है तब से जितनी आयु शेष है, आयु शेष में से लास्ट एक अंतर्मूल माइनस कर दो 14वें गुणस्थान का, उतना 13वें का काल रहेगा। हाँ देखो आहार का अंग, आहार अंगोपांगी जो दो प्रकृतियां वो किसके बनती है, 7वें और 8वें वाले को ही बनती है, उसका उदय कहाँ है तो 6ठे में है। बंध ऊपर के गुणस्थानों में है, उदय नीचे छठे गुण स्थान में होता है। मुनिराज तो छठे सातवें छठे सातवें में झूलते हैं, हम कहते ना तो छठे में है तो बंद नहीं है, सातवें में जाते ही बंद होता है, छठे में बंद नहीं सातवें में बंद, इस तरह चलेगा उसका। श्रेणी चढ़ेगी तो आठवें में बंद होकर के उसकी विच्छुति हो जाएगी। तो अप्रमत्त से लेकर अपूर्व कर्म के छठवें भाग तक प्रमाद रहित गुण स्थानों में ही होता है। आयु कर्म का बंधन कहा नहीं होता तो तीसरे गुण स्थान में आयु का बंधन नहीं है। अंतर्मूर्त सातवें का काल ही अंतर्मूर्त है, आठवें में भी अंतर्मूर्ति बंधेगी, उससे ज्यादा नहीं। आयु कर्म का बंधन मिश्र गुण स्थान तथा निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था को प्राप्त मिश्र कायु, देखो इसका अर्थ देखते हैं। तीसरा गुण स्थान तो मालूम है, वहां आयु का बंधन नहीं होता, ही नियम। अब निवृत्ति अपर्याप्त किसको कहेंगे? पर्याप्त नाम कर्म वाले जीव, कहीं से मरकर आए तो उनकी पर्याप्तियां शुरू हो जाती है। अभी हम संगी पंचेंद्री की बात करेंगे तो छह पर्याप्तियां एक साथ चालू हो गई, एक पहली चालू पूर्ण हुई फिर दूसरी पूर्ण हुई, उसको कहेंगे शरीर पर्याप्ति पूर्ण हुई। उसके पूर्व तक क्या कहेंगे उसको? निर्वृत्ति अपर्याप्त जीव, यानी पर्याप्त नाम कर्म वाले है, सभी पर्याप्तियां नियम से पूर्ण होने वाली है, परंतु जब तक दूसरी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है तब जो मनुष्य तीर्यंचों को औदारिक मिश्र का योग होगा, देवनारियों को वैक्रिय मिश्र का योग होगा, उस अवस्था में निवृत्ति अपर्याप्तम की बात है, उस अवस्था में उनको आयु का बंधन नहीं होगा। कोई पूछेगा क्या औदारिक मिश्र अवस्था में आयु का बंधन हो सकता है? हाँ हो सकता है, किसके? लब्धि अपर्याप्तों को थ्रू आउट लाइफ टाइम औदारिक मिश्र ही का योग है, उनको तो आयु का बंद करना है ना, नहीं तो वहां से छुटकारा कैसा होगा? आयु का बंद करेंगे वो, इसलिए निवृत्ति अपर्याप्त शब्द डाला। देव तो वैकृत मिश्र अवस्था में कोई औदारिक बंद है, इसका आयु का बंद करते ही नहीं, वो भोग के अंत में छह महीने बाकी है तब जाके आयु का बंद करते हैं। परंतु लब्धि अपर्याप्त की इतनी छोटी आयु है श्वास के 18 विभाग प्रमाण, तो उसमें तो आयु का बंद करेंगे वो अंतर्मुक्त। अब बाकी चर्चा हम बाद में करेंगे, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। बोलो 2400 भगवान।